आप अल्लाह का नाम पूरी दुनिया में ले सकते हैं, तो फिर राम का नाम भी पूरी दुनिया में, उनका भी डंका बजने में आपको किसी को भी कोई तकलीफ ना। पल पल में, युग युग में, कण कण में राम, हर तन में, हर मन में, क्षण क्षण में राम। फॉरगिव एंड फॉरगेट, आई विल नेवर टेल एनीबडी टू नीदर फॉरगिव नॉर फॉरगेट। जो हेट्रेड है ना, दैट इज द प्योरेस्ट ऑफ ऑल इमोशंस, लेट मी टेल यू दैट। प्यार में मिलावट हो जाती है, नफरत में नहीं होती। एक कारण है कि क्यों विष्णु जी के पाँव पे लक्ष्मी जी बैठ के उनका पाँव दबा रही हैं। एवरीथिंग हैज रीजंस। मैं आपको हंसूँ, आपके साथ हंसूँगा, आपको हंसाऊँगा। मैं रात होते होते जैसे ही मैं, मेरे पास अकेले का वक्त आता ना, मैं टूट के बिखरता हूँ, कई बार मैं रोता हूँ। आई नो ये सुनने वाले कुछ लोग खुश भी होंगे कि अभी तक हम तकलीफ दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ और तकलीफ दो बॉस। आपके प्यार में शक आ सकता है, नफरत में शक नहीं आ सकता। वो दी प्योरेस्ट सफ़ेद है वो, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो एक वाइल्ड बीस्ट है। यू नीड टू बी रियली स्ट्रॉन्ग टू लर्न टू टेम इट।
क्या है दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार एपिसोड ऑफ दोस्त कास्ट में। मेरा नाम है विनम्र कसाना। मेक श्योर यू सब्सक्राइब बिकॉज वी आर द बेस्ट इन भारत। आज के हमारे गेस्ट का नाम है अक्षत गुप्ता। ही इज एन ऑथर, स्क्रीन राइटर, ही रिटन 3 बुक्स, द हिडन हिंदू, सब किताबों ने बहुत बढ़िया सेल्स करी हैं। ही इज अ मास्टर ऑफ स्टोरी टेलर, ही इज वर्क इन बॉलीवुड, ही इज हियर टू टेल स्टोरी। He's here to talk about Sanatan Dharma ka revival, and it's a podcast like nothing else you've ever seen. Make sure you enjoy, and the episode with Akshat Gupta begins in 3, 2, 1. Akshat ji, स्वागत है आपका दोस्तकास्ट पे। आपके चर्चे मैं नहीं बोल रहा, YouTube का हर एक व्यू बोल रहा है। और जिस प्रकार से आप इंटरव्यूज दे रहे हो और आपकी किताबें मशहूर हो ही जा रही हैं, आई थिंक यू हैव बिकम सिनोनिमस विद मैन फ्रॉम बॉलीवुड सिनेमा लिटरेचर हु इज नाउ टेकिंग द हिंदू आइडेंटिटी, जो उसको कंसोलिडेट करा आपने किताबों के माध्यम से
जी।
उस पर सब लोगों ने चर्चा कर रखी है। आई थिंक पीपल कैन वॉच डजन्स ऑफ इंटरव्यूज वेयर यू हैव टॉक्ड अबाउट योर बुक्स वेरी एक्सटेंसिवली। ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे एंड मैंने आपसे पूछा तो आप दिनचर्या क्या करते हो, क्योंकि आपने बोला आप फुल टाइम ऑथर हो। कितनी तो आप किताबें अभी आपकी आने वाली हैं इस साल
जी।
एंड यू सेड कि मैं अपनी, क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ,
समकक्ष
की सेवा में होता हूँ,
का ख्याल रखता रहता
हूँ, उनका ख्याल रखते हैं। आई फाउंड दैट वेरी फैसिनेटिंग, मोस्टली बिकॉज इसको हम वेस्टर्न लेंस से बोलेंगे कि यू आर लाइक अ स्टे एट होम हस्बैंड, राइट, है ना। एंड वी ऑफन यूज इट इन अ वेरी डेरोगेटरी लाइट, बट यू आर अ वेरी ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव प्रोवाइड ऑन दैट, सो आई फिगर्ड वी स्टार्ट देयर।
सो यूजुअली व्हेनेवर आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एनीवेयर, be it on a stage or in front of the camera, this is a line that people have started associating with me already without even me speaking it.
Achha.
And that is ki hi, mera naam Urmila Putra Akshat Gupta hai. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist. And people smile, and on while I'm on stage, the audience laugh on it. माई इंटेंशन ऑल्सो इज टू मेक देम स्माइल एंड लाफ। पर आप किसी बात पर अगर मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, उस बात का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक मजाक है। आप एक बच्चे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं, लेकिन वो बच्चा तो है ना सच में। सो आई मेक, आई से दैट सो दैट पीपल कैन स्माइल, बट इट डजेंट, फॉर मी इट डजेंट किल द इंटेंसिटी ऑफ दैट स्टेटमेंट, और इट डजेंट मेक इट फेक फॉर मी। इट्स जस्ट नॉट फॉर पीपल टू लाफ ऑन। It is the truth of my life, and I wear it on my sleeves very proudly as I wear this color. Not that I only wear this color, as in the same way, not that I only am a house husband, I'm also an author, a screenwriter, a poet, a lyricist. But yeah, whatever I do, I'm proud of it.
और आपने बोला कि आप ये काम कर रहे थे आपकी किताबों के छपने से पहले भी, जब कोई भी नहीं जानता था, और आपको उसमें कोई खेद नहीं था, और आपको मतलब योर लाइफ इन अ वे इज कॉन्ट्ररी इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट टू मोस्ट आदमी, ये नहीं करना चाहेंगे। मोस्ट आदमी और औरत के रोल्स बड़े सेपरेट माने जाते हैं आजकल भी, इवन दो लाइक हम ऐसे ज़माने में जहाँ लिविंग्स बड़े एक्सेप्टेड हैं, मेट्रोपोलिटन लाइफ स्टाइल्स होते हैं, अगर किसी के बच्चे होते हैं तो हस्बैंड और वाइफ दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वली शेयर करते हैं, राइट, बट आपने अपनी लाइफ को ही उसका एक वो बना दिया।
So let me take you to a little past of my life. Not बहुत पीछे नहीं ले जा रहा हूँ आपको, पर क्या हुआ था कि मेरी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी उथल पुथल हुई थी 2014 में। बिकॉज ऑफ विच आई ट्राई टू एंड माई लाइफ एंड थिंग्स, दिस इज माई सेकेंड मैरिज. पूरा शहर, मतलब क्या बोलना चाहिए, पूरे शहर ने मिलकर डिस्कार्ड कर दिया था मुझको कि ये हमारा नहीं है, होगा किसी का. देयर वाज नोबडी दैट आई कुड इवन टॉक टू. व्हेन यू आर अपसेट, जब आप दुखी हैं तो आपको कई बार, आपको पता होता है कि आपको जिस बात का दुख है ना, उसमें कोई आपकी मदद नहीं कर सकता. स्टिल यू जस्ट वांट समबडी टू लिसन सो दैट यू कैन क्राई. कोई प्यार से और शिद्दत से आपकी बात सुन लेता है ना, उसी में आपको ठंडक मिल जाती है.
आपका कंधा भी नहीं था रोने का?
नहीं था. मेरी ये स्थिति थी कि मैं कई कई दिन मेरा फ़ोन चालू नहीं करता था, क्योंकि मुझे मालूम होता था कि उस फ़ोन में या तो ऐसे फ़ोन होंगे कि तुम कोर्ट क्यों नहीं आया, तुम थाने क्यों नहीं आया, या लॉयर का मैसेज होगा कि ये नोटिस आया अक्षत, एक और नोटिस आया अक्षत. तो मैं कई कई दिन तक फ़ोन ही नहीं चालू करता था. तो तीन काम करता था मैं, और ये एक आध दो दिन की बात नहीं है, ये मतलब कंटिन्यूसली फॉर वीक्स आई यूज़ टू डू दिस. मैं खाता था, रोता था और सोता था और कुछ नहीं करता था, कोई था ही नहीं बात करने को. ऐसे वक्त पे आई मेट दिस गर्ल फॉर द फर्स्ट टाइम हु हेल्ड माई हैंड्स. जब अपने साथ छोड़ के जा रहे थे ना, तब पहली बार मैं इनसे मिला था, जो पहले मेरी दोस्त बनी. उन्होंने बोला मैं साथ नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा, शी स्टूड बाई मी. जब आप डिप्रेशन में होते हैं ना सिकंदर, तो आपको एक ही बात को कई कई बार बोल के रोना होता है. एक बार में ख़त्म नहीं होता वो, इट्स लाइक कफ, यू नो, कि आप थूकते हो फिर आ जाता है, फिर थूकते हो फिर आ जाता है. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड अ बेसिन, यू नीड अ बेसिन विच इज़ ऑलवेज देयर सो दैट यू कैन कीप स्पिटिंग. शी वॉज रेडी टू बी दैट पर्सन कि आई नो यू हैव ऑलरेडी. मुझे एम्बेरसमेंट होने लग जाता था कि कितनी बार एक ही बात इसको बोलूँ. वो चुपचाप बैठ के सुनती थी, कोई बात नहीं बोलो, निकालो निकालो. जब आप बीमार पड़ते हैं और आपको खांसी शुरू होती है, तो आपके आपका फैमिली डॉक्टर और आपकी मदर दोनों आपको सबसे पहले ही बोलते हैं बेटा कफ आया तो थूको. डिप्रेशन ऐसे ही होता है, डोंट कीप इट इनसाइड, जस्ट कीप स्पिटिंग इट आउट. शी कंटिन्यूड लिसनिंग इट फॉर आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स.
और उनके ऊपर भी बहुत बड़ा श्रेय है, क्योंकि मुश्किल होता है किसी के इतने सारे घावों को सुनना, उन्हें प्रोसेस करना.
नहीं होता आसान. अपने बोलते हैं कि हो गया यार, कब तक रोगे,
समझ जाओ यार, जिम वगैरह करो ठीक हो जाओगे.
अरे तुमने 5 बार बता दिया, मैंने 5 बार सुन लिया, अभी हो गया ना, बस करो. शी नेवर सेड दैट, बोलो बोलो. तो व्हेन आई हैड नोबडी, शी फर्स्ट स्टूड बाय मी एज अ फ्रेंड, देन शी सेड व्हेनेवर यू आर डन विद योर केसेस आई एम रेडी टू गेट मैरिड टू यू. मतलब आप ये समझिए कि उस समय मैं मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली आई वॉज ब्रोक ऑलवेज. आई एम अ हार्ट पेशेंट. आई गॉट माई फर्स्ट हार्ट अटैक एट द एज ऑफ 24 एंड अ हाफ प्रिसाइसली. मैं 2014 में 3.5 करोड़ रुपए के कर्ज में था. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपने शरीर के कपड़े उतार के बेच देता ना, उसके बाद देर वॉज 3.5 करोड़ स्टैंडिंग ऑन माई हेड. मेरे सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके थे, आई हैड नथिंग, नो वर्क टू डू. सोशली मेरे को देश निकाला मिला हुआ था पूरे इंदौर से, नो बडी वॉन्टेड टू बी एसोसिएटेड विद मी. और मेंटली मेरी ये हालत थी कि मैं सुसाइड अटैम्प्ट कर रहा था और डिप्रेस था. एट सच पॉइंट ऑफ टाइम दिस लेडी सेड दैट आई विल स्टे विद यू, एंड शी सेड आई विल गेट मैरिड टू यू. एंड आई वॉज दी वन टू से दैट यू आर बोर्डिंग अ सिंकिंग शिप, डोंट डू दिस. समझदार लड़की हैं आप, पढ़ी लिखी हैं, डोंट डू दिस. हर फादर लेटली आज गिव मी वन गुड रीज़न कि मैं आपका हाथ इस लड़के के हाथ पे दे दूं. शी सेड आई डोंट हैव एनी रीज़न बट वन, कि नियत साफ है इसकी, मेरे को दुखी नहीं करेगा. खुश कितना रखेगा नहीं पता, दुखी नहीं करेगा. एंड अपने पूरे घर से लड़के जब इन्होंने मुझसे शादी की, तब तक मुझे कोई नहीं आता था. नॉट अ फिल्म, नॉट अ बुक, आई डिड नॉट एग्जिस्ट फॉर द वर्ल्ड टिल देन. तो उस समय जब मुझसे कोई बात ही नहीं करता था, कोई ख्याल ही नहीं रखता था, और मेरी वाइफ काम करती थी, शी वॉज हेडिंग 5 स्टेट्स फॉर अ कंपनी, तो ट्रैवल बहुत होता था उनका. आई यूज टू टेक केयर ऑफ होम, नो बडी टू टॉक टू, नथिंग. टी वी देखो, भाई आती थी, उनसे खाना बनवा लिया जाता था. जब मेरी वाइफ आती होती थी तो उनको फ़ोन करके पूछा, आज आपका क्या खाने का बना है, मैं आपके लिए वो बनवा दूंगा. लेकिन बाई से लेके घर के रेंट से लेके मेरे शरीर के कपड़े तक का पूरा खर्च वो उठा रही थी. तो जब वो हस्बैंड का पार्ट इन टुडेज नॉर्म्स ऑफ दी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, मेरा मानना नहीं है कि हस्बैंड को यही करना चाहिए और वाइफ को वही करना चाहिए, पर इन दैट सेट नॉर्म्स जब वो हस्बैंड का पूरा काम कर रही थी तो मैं, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक लड़की बाहर जाके काम करे, वहाँ आप ठीक हैं, जब घर में चार पैसे आ रहे हैं तो ठीक है, तो फिर आप घर का काम कर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम।
किसी ज्योतिष ने आपको बोला कि आपका भाग्य बदल जाएगा इनसे मिलके?
अभी तक तो नहीं।
अच्छा,
पर अब मैं ज्योतिषों को बता सकता हूँ मेरा भाग्य बदल गया इनको मिलके।
तो जब आदमी की सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ऐसे वहाँ पे चली जाती है और इतनी अक्यूट मेंटल स्थिति हो जाती है, उससे अपने आप को रिकवर करना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप बोलो कि यार देखो इस तरह से मैंने अपने डिप्रेशन हल करा, लेकिन मैंने अक्सर पाया है या ऐसा जाना है कि टू गेट आउट ऑफ एन अक्यूट मेंटल क्राइसिस यू नीड अ बिगर प्रॉब्लम टू सॉल्व, समथिंग दैट इज इवन बिगर देन व्हाट यू आर करंटली फेसिंग। तो क्या आपने उसको लिटरेचर बनाया कि मैं इन किताबों के अंदर वो जाऊँगा या मैं अपनी जितनी भी एनर्जी है उसको मैं क्रिएटिव परस्यूट्स में डालूंगा? हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ स्कल्प्ट योर कमबैक ऑलमोस्ट?
हेट्रेड। You know, Sikandar, I'll tell you something. सब लोग बोल देते हैं बेटा माफ़ करना सीखो, forgive and forget, है ना? We have been hearing it since our childhood. Forgive and forget. I will never tell anybody to neither forgive nor forget. Reasons. सबसे पहले तो जो hatred है ना, that is the purest of all emotions, let me tell you that. प्यार में मिलावट हो जाती है, नफरत में नहीं होती। आपको किसी से नफरत है ना तो है, आपको कोई कितना समझा ले आपकी नफरत अगर जाएगी तो खुद जाएगी, किसी के समझाने से नहीं जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी से प्यार है और कोई चार चीज उसके बारे में बोल देता है ना तो आप उसमें से एक चीज मान लेते हो, वहीं आता है शक। आपके प्यार में शक आ सकता है, नफरत में शक नहीं आ सकता। वो दी प्योरेस्ट सफेद है वो, मगर प्रॉब्लम ये है कि वो एक वाइल्ड बीस्ट है। यू नीड टू बी रियली स्ट्रांग टू लर्न टू टेम इट। पर अगर आप वो सीख गए ना तो द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस, एंड द ग्रेटेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस यू कैन ओनली रीच दैट व्हाइल यू आर राइडिंग अ बीस्ट कॉल्ड हेट। मेरे को इतनी नफरत थी, अभी भी है, झूठ क्यों बोलूं? मेरे साथ जब आपके साथ कोई गलत करता है भाई, एक 8 फुट का आदमी अगर मेरे को मारेगा तो मुझे मालूम मैं पलट के उसको मार नहीं सकता, और अगर मैं उसको मारूंगा तो मैं और पिटूंगा। मैं भले घर आ जाऊंगा पर मैं भूलूंगा नहीं। मेरे को जब मौका मिलेगा ना तो मैं 10 लोग लेके जाके उस 8 फुट के आदमी को 80 मार के आऊंगा।
सारी गैंग से वासे परसी के ऊपर तो उधारित है।
और आपको पसंद है वो फिल्म? मैं नहीं से आप नॉट इन पर्सन
एवरीवन, बिकॉज एवरीबॉडी, हमें उन इमोशंस को दिखाने का बड़े पर्दे पर मौका नहीं मिलता। हम यूजली इन इमोशंस को विलिफाई करते हैं, इग्नोर करते हैं, नेगेट करते हैं।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नफरत बहुत अच्छी चीज़ होती है ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि नफरत तो चाकू लो और बंदूक लो, लेकिन इफ़ यू, व्हेन आई से इफ यू कुड मैनेज टू टेम इट देन यू नो ग्रेटेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। क्या है कि आप इतने बड़े बन जाओ कि आपको जिन्होंने छोड़ा है ना उनको इस बात का दुख हो कि अरे यार ये अपन इससे बना के चलते तो आज
हमारा क्या होता। कार्ल यूंग ने एक बात कही थी कि द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुएशन और कंप्लीटनेस इज टेमिंग योर ओन शैडो। आपके जो जितने भी डार्क इम्पल्सेज हैं जिनको हम यूजली रिप्रेस करते हैं क्योंकि सोसाइटी में उनकी जगह नहीं होती। मैंने कल परसों एक रील इसी चीज़ पर बनाई थी कि अगर आप बुरे समय से जा रहे हो तो आपको अपने फियर, एंगर, हेटेड, जेलेसी का इस्तेमाल करना चाहिए कुछ ऐसा करने के लिए। खुद भगवान आपको बोले यू डिजर्व इट, लेकिन दिक्कत क्या है? यू कैन नॉट सस्टेन हेटेड नो बिकॉज इट्स गोना रन योर लाइफ फॉरएवर। फिर आप क्या करते हो? एट सम पॉइंट यू टू रिजॉल्व दोस थिंग्स।
नो, नॉट नेसेसरी।
यू डोंट बिलीव इन रेजोल्यूशंस। आप तो स्टोरी राइटर हो, आपकी कहानियों के एंड में तो रेजोल्यूशन आना ही चाहिए।
नहीं, रिडेम्पशन आएगा, रेजोल्यूशन क्यों आएगा? दोनों अलग अलग चीज है। मेरे किरदार को क्लोजर देना है मेरे को और मैं अपने किरदार को भी क्लोजर दूंगा जब उसका वक्त आएगा तो, लेकिन दैट इज रिडेम्पशन, नॉट रेजोल्यूशन।
चलो इस पर बात करते हैं।
एक और चीज़ मैं आपको इस पर ऐड कर दूं। इफ यू हैव लर्न हाउ टू टेम हेट्रेड एंड इफ यू लर्न हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड थ्रू दैट, आई हैव नॉट सीन माय सन सिंस लास्ट 9 ईयर्स बिकॉज ऑफ द पीपल दैट आई हैव नॉट सीन हिम। आई एम स्टिल हेटिंग देम एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन मेकिंग माई सेल्फ सो बिग कि वो मेरे बच्चे तक का, मेरे बच्चे के कान तक पहुँचे कि ये इंदौर का ये जो बंदा है ना, दैट्स यू शुड फील प्राउड बिकॉज ही इज योर फादर एंड इट इज़ ट्रस्ट मी इट इज़ डूइंग सो गुड टू मी. आई एम वेटिंग फॉर माई सन एवरी डे. मैं बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ सिकंदर, जब मैं बात करता हूँ ऑन कैमरा और ऑन स्टेज. मैं हर रात को बिखर जाता हूँ. मैं आपको हंसूँगा, आपके साथ हंसूँगा, आपको हंसाऊँगा. मैं रात होते होते जैसे ही मेरे पास अकेले का वक्त आता ना, मैं टूट के बिखरता हूँ. कई बार मैं रोता हूँ. आई नो ये सुनने वाले कुछ लोग खुश भी होंगे कि अभी तक हम तकलीफ़ दे रहे हैं. मैं बोल रहा हूँ और तकलीफ़ दो बॉस, देते जाओ. रबर की बॉल होती है ना, जितने ज़ोर से ज़मीन में पटकोगे ना, वो उतना ऊपर उछलता है. करो. और मैं रोज़ सुबह अपने आप को फिर समेट के एंड आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट वन एजेंडा, दैट आई टू बी द बेस्ट ऑफ मी. चल रहा है काम.
जब हम स्टोरी टेलिंग करते हैं तो मैंने एक छोटी सी क्लास ली थी कोर्सेरा से बहुत साल पहले, वेस्लेन यूनिवर्सिटी से. तो मेरे को उससे पता लगा कि हीरोज जर्नी का आर्क क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होती है स्टोरी की. आप तो इतनी कहानियाँ लिखते हो तो वो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब आपके जहन में बसा हुआ होगा वो, कि एक इग्नोरेंट प्रोटैगनिस्ट होता है, एक कॉल टू एक्शन आता है, पहले वो उसको इग्नोर करता है, फाइनली एक एडवेंचर पे निकल जाता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, एलाइज मिलते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, फाइनली क्लाइमैक्स पॉइंट आता है जहाँ पे उसके मोस्ट चेरिस्ट बिलीव्स को उसको क्वेश्चन करना पड़ता है और कुछ बहुत मुश्किल करना पड़ता है. वहाँ पे उसने अगर रिजॉल्व करा तो दैट्स वेयर द स्टोरी स्टार्ट्स टू स्लाइड. नहीं करा, इट्स नॉट द क्लाइमैक्स. एट एंड में जाके सब छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स बनी थी, ऑल ऑफ द थिंग्स, ऑल ऑफ द लूप होल्स दैट यू ओपन गेट रिजॉल्व. आप क्या मानते हो ये कन्वेंशनल स्टाइल है स्टोरी टेलिंग का?
पहली बात तो वो आपने जो शुरुआत में बोला अबाउट इग्नोरेंट प्रोटागोनिस्ट एंड थिंग्स, लेट मी फर्स्ट टेल यू दैट टिल डेट आई हैव नो फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ नीदर राइटिंग बुक्स नॉर राइटिंग फिल्म. कोई कोर्स नहीं, कुछ नहीं किया. बस मन में एक कहानी आई और मेरे को लगा यार ये अच्छी कहानी है एंड आई स्टार्टेड राइटिंग इट. सो अब जब मैं और लोगों से मिल रहा हूँ तो मेरे को इस तरीके के स्टेटमेंट्स समझ में आ रहे हैं. नाउ कम्स व्हेन यू डिडंट नो एनीथिंग अबाउट राइटिंग, विच इज़ यू नो इट्स टू सिंपल टू बी ट्रू, कि कुछ नहीं आता था. मैं तो होटल रेस्टोरेंट चला रहा था. आई एम दी थर्ड जनरेशन ऑफ माई फैमिली इन टू हॉस्पिटैलिटी. नेवर एवर रिटन अ शॉर्ट स्टोरी बिफोर राइटिंग अ ट्रिलॉजी.
व्हाट मेक्स अ गुड स्टोरी देन?
आई स्टिल डोंट. ओके, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ
जी.
वो काले रंग की बड़ी सी मधुमक्खी होती है जिसको हमारे तरफ में बर्रो बोलते हैं.
ओके.
इतना बड़ा उसका साइज होता है और जूम आवाज़ आता है वेन एवर. आपको मालूम है पूरे दुनिया के साइंटिस्ट लोग जब उस पर रिसर्च किए, फिजिशियंस क्या बोलते हैं, फिजिसिस्ट
हाँ,
फिजिशियंस तो डॉक्टर हो गए ना. जब उस पर रिसर्च हुआ ना तो सबने, सारे फिजिसिस्ट ने एक दूसरे को बताया ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड कि ये वाला जो बर्रो है, दिस ब्लैक बीटल वॉट एवर यू कॉल इट, ब्लैक बी, इट कांट फ्लाई. द प्रॉब्लम इज कि हम सब एक दूसरे को बता रहे थे कि वो नहीं उड़ सकता, उसको किसी ने नहीं बताया कि वो नहीं उड़ सकता. वो उड़ जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाता है. उसको कहीं दूसरे पत्ते पे खाने का दिखता है, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ उड़ जाता है, जूम आवाज करता हो. दी साइज ऑफ हिज इट्स विंग्स कैन नॉट सपोर्ट इट्स फ्लाइट. दी साइंटिस्ट हैव नो आंसर्स, वो उड़ता कैसे? मेरे को नहीं मालूम कैसे लिखते. मैंने ना कोई कोर्स किया है, ना मेरे लेखन में कोई गुरु हैं. मैं बहुत ज़्यादा किताबें भी नहीं पढ़ा हूँ अपने लाइफ में, अदर देन माई सिलेबस बुक्स की. मेरे को पता है कि पढ़ते पढ़ते यू नो यू सबकॉन्शियसली स्टार्ट इनहेरिटिंग थिंग्स कि हाँ हीरो मतलब ऐसा, विलन मतलब ऐसा.
That's it.
I don't know that. Not even that, because I don't read books other than my syllabus. Not read one.
तो एक किरदार को एक अच्छी कहानी में कैसे डाला जाए, बात वही आती है कि आप या तो या आपको बॉलीवुड के स्क्रिप्ट के लिख के थोड़ा आभास हो गया है, या आपने आसपास पिक्चरें देखी हैं.
बात यह है कि जब ये कहानी मैं लिख रहा था ना, तो मैं ये किसी के लिए नहीं लिख रहा था. मैं आपके लिए नहीं लिख रहा था, मैं पब्लिशर के लिए नहीं लिख रहा था, मैं फिल्म इंडस्ट्री के लिए नहीं लिख रहा था, मैं रीडर के लिए नहीं लिख रहा था. मैं लिख रहा था क्योंकि मेरे को लिखने में मज़ा आ रहा था. मैं लिख रहा था क्योंकि मेरा बेटा, आई एम सॉरी, हाँ, माई सन इज़ कमिंग ऑल ओवर अगैन, क्योंकि ही इज़ द सेंटर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ, गुड एंड बैड. सो बिकॉज ही was at that point of time, he was 6.5 years old, and he was a big Marvel fan. He understood the world of superheroes. I wanted to tell him about Hinduism, but in the language that he could enjoy it also. कि बेटा बैठो और हनुमान चालीसा याद कर लो, नहीं सुनो कि हनुमान कौन है. तो वो करने के चक्कर में 7 इमॉर्टल्स जो हैं हमारे हिंदू एंशियंट स्क्रिप्चर्स के, उनके इर्द गिर्द मैंने एक कहानी गढ़नी शुरू की जो मुझे लिखने में मज़ा आ रहा था. एंड आई वाज श्योर कि आई नो वन किड जिसको मज़ा आएगा. सो इट वाज वन हु वाज राइटिंग फॉर वन पर्सन हु आई वाज श्योर विल इन्जॉय इट. अनफॉर्चुनेटली मैं अभी तक उनको ये किताब नहीं दे पाया हूँ जिसके लिए लिखी थी. उसके अलावा दुनिया भर के लोग पढ़ रहे हैं उसको, आएगा वो भी वक्त. सो आई मे बी आई थिंक एज आई टोल्ड यू बिफोर द कैमरा स्टार्टेड दैट थिंकिंग इज़ एन आर्ट एंड राइटिंग इज़ अ स्किल. तो आप किसी को सिखा सकते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, वर्ड्स कैसे बनाते हैं, पंक्चुएशन मार्क कहाँ लगेगा, कॉमा कहाँ लगेगा, बट नोबडी कैन टीच नोबडी हाउ टू थिंक. अब आप ये सोचिए सिकंदर कि कोई दुनिया में एक पहला व्यक्ति होगा ना जिसने ऐसे करके सिंबल बनाया होगा और बोला होगा इसको आज से हम म कहेंगे.
जी
सोचिए कि अगर वो व्यक्ति ऐसा बना के बोलता कि प प में आ की मात्रा, प प में आ की मात्रा, हम इसको म कहेंगे, तो आज हम प प में आ की मात्रा, प प में आ की मात्रा लगा के मामा पढ़ते होते, क्या होता दुनिया का. करेक्ट. तो कोई फिक्स्ड फॉर्मेट तो नहीं होना चाहिए ना आर्ट का. मुझे लगता है मेरी कहानी ऐसी दिखती है, तो मैंने अपनी कहानी ऐसी बना दी, इसलिए लोगों को अच्छी लग गई. अब आपसे 20 साल बाद, 25 साल बाद, वैसे इस कहानी पे और इस कहानी का जो पूरा जर्नी रहा है उस पर रिसर्च हो रहे हैं, कुछ पब्लिशिंग हाउसेज भी कर रहे हैं कि हाउ डिड दिस स्टोरी एंड दिस बुक इन सच शॉर्ट नोटिस बिकेम this successful.
What do you think it is? आपके हिसाब से, मतलब आप ये तो कह सकते हो कि मुझे आइडिया नहीं था, मेरे में इंस्टिंक्ट था, मैंने इंस्टिंक्ट को यूज़ करा. आपने भी बताया स्टार्टिंग में लोग इसको छू भी नहीं रहे थे कि ये एक पोलराइजिंग पीस है,
ऐसा लग रहा था लोगों को.
हाँ तो और देखो हम ये भी बोल सकते हैं कि अमीश जी ने पहले इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा लिखी, उस तरह की वो बनाए, अश्विन सांगी जी ने भी लिखी हैं. तो इस तरह का कल्चर तो चलता आ रहा है जहाँ पे हिंदुइज्म की या भारत की कहानियों को या थ्रिलर के माध्यम से या फिर एक फन फिक्शनल नॉवल के माध्यम से पहले लोगों तक जाने की कोशिश करिए. Why is it that this became viral? Well, I would consider these books viral.
Right? This is now.
So, was it कि आपकी मार्केटिंग की सूझबूझ थी या सही वक्त था या आपको क्या लगा है? Do you have some data to understand why it happened? या maybe देश के अंदर एक वाकई में एक रुचि है इस वक्त जो शायद पहले नहीं थी.
Okay. हम लोग ना, हम लोग बहुत बड़े इनोवेटर्स रहे हैं लाइफ लॉन्ग. मतलब एज इंडियंस, मैं हिंदूज की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, इस मिट्टी में ना बहुत इन्वेंशंस हुए. तो हमको ना हमारे कम से कम हिंदू स्क्रिप्चर्स में तो लिखा है कि क्यों पूछो, क्या चीज़ क्यों किया जा रहा है, सवाल पूछो. तो हम सवाल पूछना जानते थे हमेशा से. अब ना हम लोगों को अपंग कर दिया गया. और मैं जब बोल रहा हूँ अपंग कर दिया गया, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ. आप सोचिए कि हम बचपन से हम पढ़े, अब हम हमारे बच्चों को और अपने नेक्स्ट जनरेशन को पढ़ा रहे हैं अल्फ़ाबेट्स ए बी सी डी जेड तक. आई ई भी सिखा रहे हैं, लेकिन ए बी सी डी भी सिखा रहे हैं. ए सीखना ज़रूरी है. आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टैंड ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, एंड फॉर दैट यू नीड टू नो इंग्लिश वेल.
इट्स द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड.
सो यू नीड टू नो इट इफ़ यू वॉन्ट अ प्रोग्रेस. टोटली एक्सेप्टेबल, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है. पर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल और जी फॉर गॉड सिखाया जाएगा, ये आपने और मैंने तो तय नहीं किया था. ये तो आया है. तो वाई ए फॉर एप्पल, वाई नॉट ए फॉर अग्नि, वाई बी फॉर बॉल, वाई नॉट बी फॉर भगवान, बी फॉर भगवा, बी फॉर बलराम, वाई सी फॉर कैट, वाई नॉट सी फॉर कल्चर, डी फॉर धर्मा, ई फॉर एलिफेंट क्यों सीख रहे हैं? ई फॉर एकदम सीखो, लगे हाथ गणेश जी सीख जाओगे. एफ फॉर फिश क्यों सीख रहे हो? एफ फॉर फरसा सीखो. एफ फॉर फेथ सीखो, ज़्यादा लिबरल और सिक्योर हो तो, सेक्युलर हो तो. और ये सब करते करते उन्होंने जी फॉर गॉड सिखाया ना आपको. तो आप जी फॉर गणेश क्यों नहीं सिखा रहे हो? आप जी फॉर ग्रंथ क्यों नहीं सिखा रहे हो?
बिकॉज इंग्लिश हैज ओरिजिनेटेड आउट ऑफ इंग्लैंड, सो दे विल टीच यू व्हाट what is their culture, right? It's pretty simple.
No, that's not culture, no. That's a language. Language is not culture. आप अगर कल्चर आप सिखा रहे हो तो जो क्रिश्चियन है उसको आप सिखाओगे ना कि होली वाटर क्या है, दैट इज देयर कल्चर.
श्योर.
बट ये जो इन्फ्यूजन ऑफ, और मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश सीखना जरूरी है, मेरे को इंग्लिश से प्रॉब्लम नहीं है, मेरी किताबें इंग्लिश में, मैं ठीक ठाक अंग्रेजी कह लेता हूँ. लेकिन अंग्रेजी सीखने के लिए जी फॉर गॉड क्यों है, जी फॉर गुरु नानक भी तो हो सकता है, ए फॉर, और मैं जी फॉर गॉड नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ए फॉर एप्पल की जगह हम ए फॉर अग्नि, ए फॉर अर्थवेद, अर्थशास्त्र सिखाएं, और मुस्लिम ए फॉर अल्लाह सिखाएं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तो हम लोग ना लकीर के फकीर हो गए हैं. बेसिकली द बॉटम लाइन ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज दैट वी हैव, ये ऐसा ही होता है, बस खत्म, ये ऐसा ही होता है. तो हम बोलते हैं हाँ ठीक है ऐसे होता है. आप और मैं यहाँ बैठे हैं, जो लोग ड्रिंक्स लेते हैं, आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं वो आई शुड नॉट बी आस्किंग हियर, बट चीयर्स सुना है ना आपने. क्यों करते हैं चीयर्स?
आई डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड चीयर्स.
वही है कि जो चीज़ हम रोज करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन ना, एक ये वर्ड जो चीयर्स है ना, वो आप लगभग रोज सुनते हैं. करेक्ट. क्यों करते हैं नहीं पता. मैंने अभी एक रील उस पर बनाया जो कि अभी बाहर नहीं आया. Anything and everything that satisfies all your five senses, ये मैं अभी तक किसी कहीं और नहीं बोल रहा हूँ, पहली बार आपको बोल रहा हूँ. Anything that satisfies all your five senses gives you a complete satisfaction. जिस भी चीज़ में पांचों आपके senses involved नहीं होते हैं, पांचों इंद्रियाँ involved नहीं होती हैं, वो आपको complete satisfaction देता है, पर complete satisfaction नहीं देता. Now, what are those five इंद्रियाज? Eyes, nose, you can, you smell, you see, you touch,
yeah.
Sight, you sound, taste, smell, and touch, you hear.
Hearing, yeah.
When you hold a glass, a drink glass, you can taste it, you can touch it, you can see it, you can smell it, but you can't hear it. That is to complete the five elements of your, you know, five senses. You cling your glasses and you say cheers. Then it gives you a complete satisfaction of all five. सेकेंड रीज़न, यूरोपियन कंट्रीज़ में जब छोटे छोटे प्रोविंसेस होते थे, स्टेट्स होते थे, तो राजा दूसरे राजा को, और कई बार तो एक राजा कई राजाओं को बुला के पार्टी में बैठाते थे. वो बैम्बू ग्लासेस चलते थे. तो आप और मैं बैठे हैं, वी आर टू किंग्स. आप मेरे पे भरोसा करके आए हैं, आपके जितने खास लोग हैं आपके दरबार के, वो सब भी आए हुए हैं. आपके ड्रिंक को मैंने पॉइजन किया. मेरी आर्मी की एक टुकड़ी किसी और राजा की आर्मी के साथ आपके सरहद पे खड़ी हुई, एंड यू डोंट नो दैट. यहाँ आप, यू डाइड, देयर इज नोबडी टू लीड देम. आपका महामंत्री सब यहीं निकल लिए. और वहाँ मैंने हमला किया और आपका राज्य आधा आधा बांट लिया, ज्योग्राफिकली भी, और जो भी आपका था सब. ये बहुत ऑफन होने लग गया था. सो ऑल द किंग्स डिसाइडेड कि अब हम जब भी मिलेंगे, भाई मैं आपके घर तब आऊंगा ना जब मैं आपसे, आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ.
करेक्ट.
उसके बाद अगर आपने मेरे को मार दिया तो ट्रस्ट ब्रीच तो कर ही रहे हैं सब. तो अब जब भी मिलेंगे तो वी विल डैश द ग्लासेस,
सो इट स्पिल्स ओवर,
कि हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे अगर ये करोगे तो.
आई नो, अब मेरे को याद आ गई कहानी सुनी हुई है.
तो आप ग्लासेस टकराते हैं इस वजह से, और आप चीयर्स बोलते हैं इस वजह से. ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन हम बस कर रहे हैं. ये एक एग्जाम्पल है जो कि हर चीज पे अप्लाई किया जा सकता है, अच्छे और बुरे दोनों पे. तो वी हैव स्टॉप्ड क्वेश्चनिंग थिंग्स, गुड एंड बैड बोथ. आप पूछिए ना पॉलिटिकल पार्टी से, जो आपको लग रहा है ऐसा गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है. अभी इंडिगो वाला जो मामला पिछले एक दो दिन से चल रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं ना. तो हम तब तक सवाल नहीं पूछेंगे जब तक बिल्कुल हमारे सर पे ना पड़ जाए.
इंडिगो का तो सैनड है, इंडिगो के साथ तो ये हर बार होता है दिल्ली मुंबई के रूट पे, बट नो वन, लोग ट्वीट करते हैं, भूल जाते हैं. इस बार थोड़ा ज़्यादा हो गया, सो देयर अंडर द फायर.
या वो सीख जाएंगे, कोई तो सीख ही जाएगा.
आई अग्री विद यू. इनफैक्ट मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप उनको, मतलब ये मेरी अपनी जो दिक्कत है वो ये है कि मैं बोलता हूँ ये हिंदी अखबार है, ये है, इसको पढ़ो. कह रहे यार हम बहुत मुश्किल टाइम लग रहा है, पढ़ नहीं पा रहे. तो आई डोंट नो कि टीयर टू टीयर थ्री इंडिया में कैसा है, बट टीयर वन इंडिया के अंदर तो हो सकता है कि जो कन्नडा पढ़ते हैं, तमिल पढ़ते हैं, पंजाबी पढ़ते हैं, उनको आती हो. लेकिन एटलीस्ट हिंदी के लिए तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, बहुत कम ऐसे लोग हैं टीयर वन के अंदर जो पेपर का स्टार्ट से लेकर एंड तक पढ़ सकते हैं.
सर एक से सौ तक नहीं बोल पा रहे हिंदी में, उनसे आप अचानक बोल देना 59 क्या होता है बताओ, तो वो ब्लैंक हो जाते हैं, फिर वो चार बार में एक सही बता पाते हैं, वो 59 में 60 आएगा तो बोलेंगे 69, ये हालत है, 69 में बोलेंगे 70 79, ऐसे करते हैं।
वैसे लोगों को रूल बता दूं कि जो उन वाला होता है उसके अंदर जो 70 है तो उससे एक पहले वाला आता है, वो राइमिंग सेम होती है ना,
हर बार ऐसा नहीं होता ना, वो भी तो प्रॉब्लम।
अच्छा कैसे, बस 100 और 99 में नहीं है ऐसा,
कहाँ है?
मैं कह रहा हूँ 100 और 99 इज द एक्सेप्शन, नो अदरवाइज 9 10 में एक्सेप्शन है, और कहाँ है?
हाँ तो ये दो तो है ही, फिर क्या आता है 29 39 49, हाँ बाकी में है,
बाकी में है ना, हाँ वो और कॉम्पर। जब मैं भी, जब मेरे को भी ये फील हुआ कुछ साल पहले कि यार तेरे को कोई इंसान बोलता है सर मेरा नंबर नोट करो 69 71 50,
89 में भी नहीं आता,
89 में भी नहीं आता,
89 is 89,
सो इट्स नॉट अ कंप्लीट रूल देन,
नो इट्स नॉट अ रूल, तो पूरा तो नहीं हो सकता है पर ठीक है।
आप पर्टिकुलरली जब आपने ये, आपकी किताब फेमस हुई है और बहुत किताबें फेमस हुई और बहुत सारे लोगों ने आपको जाना शुरू करा, हाउ इज दैट यू नो इम्पैक्टेड योर रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ योर लाइफ? मतलब हर इंसान को लगता है यार फाइनली मेरे को रिकग्निशन मिल रही है, वॉट इज समथिंग दैट यू डिडंट एक्सपेक्ट इन लाइफ टू हैपन? कौन ऐसे बड़े शायद दिग्गजों से संबंध बने आपके, शायद आपका काम इतना चला हुआ जो आपने तो अपने ऊपर यू गिव अप भी कर लिया था 2014 के अंदर, तो उस स्टैंड पॉइंट पर हाउ इज योर लाइफ चेंज्ड?
आई विल नॉट टेक नेम्स बट ऑफ द कैमरा बता दूंगा, बट यू विल बी सरप्राइज टू नो द नेम्स जिनका मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है, जस्ट सेइंग कि अक्षत आई डोंट थिंक दैट यू विल सी दिस, क्योंकि ठीक ठाक फॉलोअर्स हैं, मिस आउट होता होगा सब लोगों से, बट आई हैव सीन योर पॉडकास्ट एंड आई सॉ दिस वन एज योर फर्स्ट पॉडकास्ट, नाउ आई एम एडिक्टेड टू वॉचिंग योर पॉडकास्ट and I've seen this and this and this and this and I would love to meet you. And कभी कभी मतलब ऐसा भी लगा है मेरे को कि somebody is playing a prank on me, क्योंकि इतना बड़ा व्यक्ति या इतने बड़े celebrities आपको message कर रहे हैं। अभी जैसे वरुण धवन ने एक दिन अपनी story में डाल दिया था मेरा एक podcast का piece and somebody else sent it to me, you know, ऐसा ऐसा, I've never met him, it was a good feeling. At times when you go at places, when you know that you're going to meet some very big celebrity, you're nervous and you're preparing for a story, ki mere ko ye narration dena hai aur yahan galti na ho, and you know, you're nervous because now, like 2 minutes after this, you're going to meet that person, and then comes this person, oh hi Akshat, I was like wanting to meet you yaar, your storytelling is very good, come sit, and that podcast you said that, no, maza aa gaya yaar, and they suddenly you know comfort you so well, which you're not expecting, so aapka nervousness hatta hai, aapka confidence, over confidence nahi hota hai magar confidence badh jata hai ki nahi I am not new to this person, this person is not going to judge me on the way that I'm dressed, or the way that I'm talking, ki kaun hai ye apne aap mein na bahut bada blessing hai, ये जो फीलिंग है ना, आधी से ज्यादा दुनिया ये क्यों बोलती रहती है कि तू जानता नहीं है मैं कौन हूं, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स द अदर पर्सन टू नो हिम बिफोर ही रीचेज देयर, इसीलिए ये लाइन इतनी चलती है, प्रचलित है कि मेरे से तू जानता नहीं है मैं कौन,
तो कह रहे हैं ना जान जा प्लीज, अंदर से एक छोटी सी आवाज आ रही है, जान जाना प्लीज,
मैं 2 मिनट चुपचाप खड़ा हूं प्लीज तू पहले।
आई थिंक मैं भी पहली बार ही किसी स्क्रीन राइटर से मिल रहा हूँ, तो आई डोंट नो व्हाट द वर्क एंटेल्स, मतलब टिपिकली व्हाट इज योर वर्क लोड लाइक, आप करते क्या हो स्क्रीन राइटिंग की दुनिया के अंदर जाके? आप किसी निर्देशक से मिलते हो, उनको जाके एक आइडिया सुनाते हो, फिर आप लोग कोलैबोरेट करते हो, हाउ डज दिस वर्क आउट?
इन डिफरेंट वेज, देयर इज नो सेट फॉर्मेट और पैटर्न, डिपेंड्स ऑन आपका नाम उनके सामने गया है कि नहीं गया है, आपको वो कहाँ किस पेडेस्ट्रल पे रख रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पहले वक्त मिलेगा, एंड आई हैव बीन इनटू ऑल दोस पेडेस्ट्रल्स, बिकॉज देयर हैड बीन अ टाइम व्हेन आई वाज अ नोबडी, आई सैट इन ऑफिसेज फॉर 7-8 आवर्स जस्ट कि एक बार मिलके मेरी कहानी सुन लीजिए, और फिर जब 7-6 एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट दिस, भाई हर कोई, हर राइटर, हर स्क्रीन राइटर चाहता है कि मेरी स्क्रिप्ट संजय लीला भंसाली साहब, राजू हिरानी साहब, विदु विनोद चोपड़ा साहब, करण जौहर साहब है ना, सब पढ़े हैं। उनका काम स्क्रिप्ट पढ़ना नहीं है ना, उनका काम फिल्म बनाना है। वो पूरे पूरे दिन अगर स्क्रिप्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि स्क्रिप्ट भेजने वाले तो अनगिनत हैं।
करेक्ट।
और हर कोई उस एक आदमी से चाह रहा है कि तो वो अपना काम कब करेंगे। तो उस समय व्हेन यू आर अ नोबडी, अब व्हेन यू गो नाउ एज अक्षत गुप्ता, पीपल नो कि अच्छा ये आया ना, तो दिस सम सीरियस बिजनेस, ये कुछ लेके आ रहे, तो इतनी होगी कि इसको दो घंटा दो कुछ अच्छा दे के जाएगा। हम करें नहीं करें वो सेकेंडरी है, पर सुनाएगा सही, बचकानी बातें नहीं करेगा। तो शुरुआत में जब मैं जाता था तो बहुत घंटों बैठने के बाद फिर दो मिनट का टाइम मिलता था, तो बोलते थे कि अक्षत दो लाइन में बताओ कहानी क्या है। उसको वन लाइनर कहते हैं हमारी भाषा में, वन लाइनर, व्हाट इज़ द वन लाइनर ऑफ योर स्टोरी। तो उसमें दो तीन शब्द आते हैं, फॉर एग्जांपल मैं, या पाँच मिनट में बता क्या है, अगर अच्छा लग गया तो फिर बुलाएंगे। और वो भी कैसा हो रहा है कि वो अपने ऑफिस से निकल के कार तक जा रहे हैं। ये मैं सच में मेरे साथ हुआ है कि लिफ्ट में मैं बोल रहा हूँ और वो हाँ मैं सुन रहा हूँ, मोबाइल भी चल रहा है। यू फील वेरी बैड अबाउट दैट, बट दे आर बिजी एंड यू वॉन्ट टू बी देम, दैट इज़ वाई यू हैव कम टू देयर डोर। देयर वो नहीं आया कि अक्षत जी प्लीज़ कहानी दे दीजिए, तुम गए हो तो तुमको मालूम होना चाहिए तुम्हारी जगह क्या है। अब आपने बाहुबली देखी है?
जी।
मेरा मानना है कि सभी ने बाहुबली देखी है, और उसके बारे में मैं कोई बात करूँगा तो वो स्पॉइलर नहीं बनेगा। बाहुबली का दो पार्ट की कहानी मैं आपको डेढ़ मिनट में सुनाता हूँ।
जी
ठीक है। दो भाई हैं, चचेरे भाई हैं, एक ज़्यादा डिजर्विंग है एक कम डिजर्विंग है। जो ज़्यादा डिजर्विंग है उसको एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट, आप सुन लीजिएगा, उसको एट द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट महेशमति की महारानी, क्या नाम था उनका, शिवगामी, ने उनको राजा बना दिया है। और जो कम डिजर्विंग है, जो शिवगामी का अपना बेटा है, वो एक कॉन्स्पिरेसी करता है और कटप्पा के हाथ से, जो कि द लॉयलेस्ट ऑफ ऑल है इन दी किंगडम, उसके हाथ से मरवा देता है। और उसके बच्चे को भी मारना चाहता है, पत्नी को कैद कर लेता है, बच्चे को भी मारना चाहता है। बच्चे को शिवगामी लेके भागती है, वो मर जाती है। बच्चा पहुंच जाता है कबीले में, कबीला उसको बड़ा करता है, उसको एक लड़की का मास्क मिलता है, उसको समझ में आता है मास्क ऊपर से आया है। वो मास्क के चक्कर में ऊपर जाता है, वो लड़की मौत के मुँह में जा रही है, सुसाइड मिशन लिए हुई है महारानी को निकालने का। वो बोलता है कि मेरे को तुमसे इतना प्यार है कि अगर किसी को मरना है तो तुम्हारी जगह मैं मरूंगा। वो अंदर जाता है, उस महारानी को निकाल के ले आता है। वही कटप्पा जब उसको मारने आता है और बिजली चमकती है, उसका चेहरा दिखता है, कटप्पा बैठ जाता है। तब उसको पता चलता है कि वो यहाँ का राजकुमार है, इसका पिता राजा था और उसको कटप्पा ने ही मारा था। कैसे वो गाँव वालों और अपने कबीले को ले कर उस नॉन डिजर्विंग अपने चाचा को मार के अपना किंगडम वापस लेता है। आप मिला लीजिए, डेढ़ मिनट हुआ होगा। पूरी फिल्म इतना ही है
जी।
स्क्रीन प्ले ये होता है कि आप इस कहानी को 6 घंटे में इन द मोस्ट कैप्टिवेटिंग वे कैसे सुनाएंगे। इसीलिए ये दो फॉर्मेट होता है, एक होता है लीनियर फॉर्मेट, जो मैंने आपको कहानी सुनाई बाहुबली की वो लीनियर था
जी
लाइन से। नॉन लीनियर फॉर्मेट वो है जैसे राजा मौली साहब ने बनाया है,
जैसे क्वेंटिन टारेंटिनो भी करता है अपनी पिक्चरों में,
बहुत सारे लोग। तो ये जब आपके पास कहानी होती है ना, तब आप बैठ के सोचते हैं कि इसको शुरू बेस्ट शुरू कैसे करूं। और उससे हर पहली बार हीरो और हीरोइन मिलेंगे तो क्या नया कर दूं और क्या इंटरेस्टिंग कर दूं। तो कभी होता है पुरानी 90s की फिल्मों में कि लाल गाड़ी में हीरोइन आई, साइकिल में हीरो जा रहा है, उसने साइकिल ठोक दी, बोले ये अंधा है क्या, फिर उसको तरस आया, फिर वो गाड़ी को पीछे से उठा दिया, तो उसकी मैस्कुलिनिटी दिख रही है। अलग अलग तरीके हैं, पर हीरो हीरोइन मिलेंगे कैसे, वो सब वही है पूरी फिल्म।
ऐसे और ट्रोप्स बताओ यार, जैसे ये आपने बताया कि ये स्क्रीन प्ले है, जैसे और कैसे ट्रोप्स होते हैं किसी को, किसी एक सीन को रोचक बनाने के। और
पता नहीं मैंने कौन सी फिल्म में देखा था, देखिए एक एक वो सुनील शेट्टी साहब वाली वो फिल्म है जिसमें नाम मैं भूल रहा हूँ, अक्षय कुमार भी हैं उसमें, शिल्पा शेट्टी जी हैं,
बड़ी फ्री
नहीं बड़ी, उसमें बाद में अक्षय कुमार जी से शादी होती है और प्यार इन दोनों में होता है। हम दिल की धड़कन में रहते हैं,
मेरे को भी सब कुछ याद आ रहा है नाम के अलावा।
उसमें एक तरीका है कि पिता किरण कुमार फादर हैं, वो मिलते हैं सुनील शेट्टी से और मिल के बोलते हैं ये बदतमीज़ है और ये इसके संस्कार अच्छे नहीं है, ये मेरे घर का दामाद कभी नहीं बनेगा। शादी हो जाती अक्षय कुमार से, अक्षय कुमार अच्छा आदमी है। जैसे जैसे समय बीतता है ये बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बनता है सुनील शेट्टी, वापस आता है, उनका सब कुछ खरीद लेता है, बर्बाद कर देता है अक्षय कुमार को। और फिर किरण कुमार अपने दामाद के घर आता है जिस घर को ये खरीद के बैठा हुआ है, और ये घर के अंदर घुसता है अपनी बेटी का नाम लेते लेते और देखता है कि ऊपर ऐसे करके सुनील शेट्टी खड़ा है। सुनील शेट्टी नीचे आता है, चार लाइन बोलता है इस तरीके की कि उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे ना, ये थे ना। तो किरण कुमार एक बात बोलते हैं उस किरदार को, बोलते हैं कि तुम तब भी उसके लायक नहीं थे, तुम आज भी उसके लायक नहीं, तुम बदतमीज़ हो, यू डोंट कम फ्रॉम द राइट ब्लड, तुम्हारी परवरिश करेक्ट नहीं। तो एक वो चीज़ है। एक कोई बॉबी देओल साहब की बड़ी अच्छी फिल्म थी, उसमें आई थिंक राज बब्बर थे, मैं श्योर नहीं हूँ, बरसात फिल्म थी शायद, उसमें राज बब्बर एक पूरा सूटकेस ऑफ मनी बढ़ाते हैं बॉबी देओल साहब के साइड की, ये लो और मेरी बेटी को छोड़ दो। तो पूछते हैं कितना पैसा है इसमें, मतलब 1 करोड़ रुपये। जेब में यहाँ डालता है, 1 रुपये निकालता है, सूटकेस के ऊपर रखता है, वापस किसका देता बोलता है अगर आपने वो कीमत लगाई तो मैं उससे ज़्यादा दे रहा हूँ, भूल जाओ उसको। और फिर उन लोग में और टेंशन बढ़ जाता है। ये सब बात एक ही हो रही है देखिए। तो आप कहानी सिकंदर, कहानी दुनिया में जितनी बोली जा सकती थी ना वो सब आ चुके हैं, आप उस कहानी को नए तौर पे कैसे पेश कर रहे हैं, अब पूरा गेम उसी का बचा है।
देवडी
7 सुर होते हैं, दुनिया जहान के गाने उस 7 सुर में ही बन रहे हैं ना, 8वां सुर तो नहीं बना है। तो कहानी, आपने एलियंस पे फिल्म देख ली है, आपने पानी के अंदर की फिल्म देखी है, आपने चांद की फिल्म देखी है, आपने प्यार की फिल्म देखी है, टाइम ट्रैवल देखा है, पैरेलल वर्ल्ड देखा है, मल्टीवर्स देखा है, सुपर हीरो देखा है, कुछ छूटा नहीं है। हाउ यू प्रेजेंट इट मेक्स इट डिफरेंट।
दैट्स सो इंटरेस्टिंग। एक दो पिक्चरों के साथ और करना चाहता हूँ, आपकी समराइजिंग एबिलिटी बड़ी अच्छी है, मतलब इतनी जल्दी 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 पिक्चर क्या बना। चलो कभी खुशी कभी गम, क्या स्टोरी है इसकी?
कौन वाली है कभी खुशी कभी गम?
ये जो इसमें शाहरुख खान और ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन होते हैं
इनका, हाँ वो हेलीकॉप्टर से उतर गया।
जी 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 जी।
उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी है कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पर हाँ बड़ा बेटा जो है वो अडॉप्टेड है, क्योंकि माता पिता को बच्चा नहीं हो रहा था, और माँ जो है वो अपने अडॉप्टेड बच्चे से, अपने रियल बच्चे से ज़्यादा प्यार करती है। अडॉप्टेड बच्चा बड़ा होता है, उसकी परवरिश अच्छी की जाती है, उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दिया जाता है, और वो आता है छुट्टियों में और वो चांदनी चौक जाता है अपने छोटे भाई के चक्कर में, और उसको एक गंवार से प्यार हो जाता है। लेकिन वो गंवार जो है वो दिल की बड़ी अच्छी है, वो शी इज़ अ हैप्पी जॉली फेलो, एंड ही फॉल्स इन लव। नाउ कमिंग फ्रॉम दैट बिग अ फैमिली, रायचंद या कुछ सरनेम होता है उन लोगों,
ऐसा ही कोई नाम होता है, ऐसा ही कोई अमीर 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 रायचंद टाइप।
हाँ, तो फादर सेज कि ऐसे भी तू तो अडॉप्टेड एंड नॉट दैट मिस्टर बच्चन सेज दिस, बट मैं आई एम यू नो मैं बाहर कर रहा हूँ तुमको अपने जायदाद और अपने अपने नाम से। ये सब जब हो रहा है तो छोटा वाला बेटा जो है वो कहीं फॉरेन में पढ़ रहा है। नाउ फॉरेन से जब ही व्हेन ही रिटर्न्स बैक एंड ही लर्न्स ये हो गया है, एंड ही टेक्स इट इन हिज हैंड्स दैट आई विल ब्रिंग माई ब्रदर बैक। तो अब आप जैसे मैंने बोला ना, हर कहानी कहीं ना कहीं देखी हुई है। ये आपको भरत और राम की कहानी नहीं लग रही? रामायण
सिमिलर कहानी है।
तो आप ज़्यादातर कहानी वहीं से, आप देखिए ना कि बाहुबली में, सॉरी मैं थोड़ा विषय से,
जी जी बताओ बताओ,
बाहुबली में जो भल्लाल देव थे उनको कुछ भी दिया जा सकता, उनको गदा क्यों दिया था?
क्यों?
आपको दुर्योधन की फीलिंग आएगी उसमें, इसलिए उनको गदा दिया हुआ था। दो भाइयों का राज्य को लेकर झगड़ा है ना, तो राज्य को लेकर झगड़ा सबसे बड़ा जो दुनिया में हुआ तो महाभारत हुआ।
जी,
तो वो थोड़ा सा दे ऑल्सो वॉन्ट कि यू कैन सबकॉन्शियसली एटलीस्ट कनेक्ट
टू द ग्रैंड इंडियन एपिक,
टू द कैरेक्टर्स एंड टू द स्टोरी दैट यू ऑलरेडी नो। तो फिर वहाँ से ऋतिक साहब की जर्नी शुरू होती है, कैसे वो उनको ढूंढते हैं, उनको ढूंढ के वापस लाते हैं, दोनों का आमना सामना कराते हैं, हैप्पी एंडिंग। कहानी इतना ही है एक्चुअली।
आपके हिसाब से शायद आज से 10 साल पहले या 11 साल पहले बॉलीवुड के लोग इतना ज़्यादा सनातन धर्म पर फोकस नहीं करते थे, लेकिन आई थिंक बजरंगी भाईजान के बाद से, मेरी लिमिटेड नॉलेज है तो हो सकता है मैं गलत हूँ, उसके बाद से और फिर ब्रह्मास्त्र भी आई और पिक्चरें भी आईं, एक रिसर्जेंस देख रहे हैं हम कि सडनली सनातनी कहानियों को वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो पहले प्लेज में मिलता था या नुक्कड़ नाटक में मिलता था. पहले द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट वुड मेक फेमस वुड बी डिफरेंट. व्हाई डू यू थिंक दैट इज?
सिकंदर, यूजुअली हम लोग ये सुनते हैं कि फिल्म से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, ऑडियंस मासेस. दिस इज द अदर वे अराउंड. एक्चुअली वी मेक फिल्म्स दैट यू वांट टू सी. आज जब हम बोलते हैं ना कि गाने बड़े बेसुरे हो गए हैं, पुराने लोग बोलते हैं, अगर इतने बेसुरे हो गए हैं तो हिट कैसे हो रहे हैं? हम आपको ऐसे गाने इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप उसको एंजॉय कर रहे हैं. हम आपको फिल्म वो देंगे. अभी जब लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई हिंदुत्व की लहर है, तो यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड, द बिगेस्ट ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड, गिव मी वन नेम.
नरेंद्र मोदी. Actually, I'm not sure. I don't know.
The biggest brand of the world is religion. That is the biggest brand. So religion, and if you're saying that it is a brand, brand is always associated with money and properties and land. It is a brand. तो अभी जब तक हम पूरे secular चल रहे थे तो सब चल रहा था. ये सब भी तो हमारे इसी film industry के अंदर हुआ है ना कि film में अगर एक पंडित है तो धूर्ति होगा, एक पंडित है तो वो गलत ही कर रहा होगा, किसी को लूट ही रहा होगा, या फिर जोकर बना हुआ होगा फिल्म, कॉमेडी कर रहा होगा राम 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 बोल के. है, आप देख सकते हैं.
इवन मुंशी प्रेमचंद की कहानियां मैंने जो भी पढ़ी है, सबके अंदर ये जो महंत होता है वो पाखंडी होता है.
वो अपना अपना थॉट है.
पर आपको ऐसा नहीं लगता कि कभी कभी एक कलाकार या एक आर्टिस्ट अपनी जो इमेज है दुनिया की वो ऑडियंस को देता है और ऑडियंस उसे कंज्यूम करती है और बदल लेती है अपने ख्याल? Or do you always think that all films and all art is inspired first by the audience and you just feed what they want to see?
Cigarette peena trend ban gaya tha aur cool ho gaya tha, isliye film mein us samay ke hero cigarette pee rahe the, ya kyunki film mein hero cigarette pee rahe the isliye wo trend aur cool ban gaya tha.
Sure.
I leave it up on you. I am not answering that. You and your audience will answer this. कि सिगरेट को इतना बड़ा ब्रांड बनाने के लिए मुफ्त में हीरोज़ को फिल्म में सिगरेट दी गई थी हाथ में, फिर दिखा कि यार मेल मार्केट तो अच्छे से टैप हो गया है, तो फिर वो साइड एक्ट्रेस जो कि बड़ी खूबसूरत है और बहुत यू नो बड़ा बड़ी ग्लोरीफाइंग है या बड़ी ब्यूटीफुल है या जो भी है अट्रैक्टिव है, उसके हाथ में भी फिर सिगरेट आना चालू हुआ. फिर ज़्यादा मैनली बनाने के लिए बोला गया कि जो मैनली है वो सिगरेट नहीं पीता, वो सिगार पीता है. ये सब हुआ है.
राइट.
तो हम उस हम वहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर जब वो चीज़ चलने लग जाती है तो फिर सब वही करते हैं. इतने आप सोचिए ना, 35 साल में कोई रामायण बनाने की, आदि पुरुष अच्छी बनी कि बुरी बनी वो अब पुराना डिबेट, वो घिस गया वो. लेकिन 35 साल में वो रामानंद सागर साहब के बाद अभी तक आपको किस चीज़ की कमी थी इस देश में कि आपने रामायण और अभी तक महाभारत नहीं बना पाए आप? गिव मी अ रीज़न. यू विल नॉट बी एबल टू गिव मी अ रीज़न. सडनली अभी 12 तारीख को हनुमान फिल्म रिलीज हुई है, थोड़े समय पहले ब्रह्मास्त्र आई थी, ब्रह्मास्त्र और हनुमान के बीच में आदि पुरुष आई है ना, उसके बाद अभी एक और रामायण की तैयारी चल रही है जोर शोर से. तो ये सडनली जो हुआ है वो इसलिए, मतलब आप हमको थोड़ी ना, फिल्म मेकर थोड़ी ना बताएगा कि देखो भाई ये रामायण है. वो तो मालूम है यहाँ की जनता को. आपको ये दिख रहा है कि लोग वापस रामायण पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं. दे आर आइडियलाइजिंग द कैरेक्टर्स फ्रॉम महाभारत एंड रामायण. सो लेट्स गिव देम व्हाट दे वांट. ऐसा है.
आई सी. उस सेंस में यूट्यूबर्स, डायरेक्टर्स, स्क्रीन राइटर्स में ज़्यादा वो नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली हर कोई चाहता है कि जो लोग देखना चाहते हैं वो दिखाओ.
बिल्कुल.
तो फिर तो जॉनर ब्रेंडिंग और जॉनर ब्रेकिंग की स्पेस, इज देयर नो स्पेस फॉर दैट?
नहीं, व्हाई नॉट. बिल्कुल है. आप लगातार सी, देयर आर 25 प्योर जॉनर्स इन टू स्क्रिप्ट राइटिंग.
ओके.
ठीक है. उसमें कॉमेडी, एक्शन, थ्रिलर, हॉरर, डॉक्यूमेंट्री, मॉक्यूमेंट्री, ये सब आता है. जब आप इनको मिक्स करते हैं तो बनता है रोम कॉम. द वर्ड रोम कॉम इज रोमांटिक कॉमेडी.
करेक्ट.
दिस बुक दैट हैज गिवन मी सो मच ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट एंड रिकग्निशन, पीपल आर कॉलिंग इट अ माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन. अब इसमें तीन जॉनर की बात हो रही है, एक लोग उसको माइथोलॉजी बोल रहे हैं, साइंस अपने आप में एक जॉनर है
Correct.
और फिक्शन अलग जॉनर है, तो ये तो मैं तीन जॉनर्स मिला के ये तो मैं आपको यहीं बैठे बैठे प्रूव कर रहा हूँ दैट देयर इज सो मच ऑफ स्कोप टू बेंड जॉनर्स.
लाइक यू कुड इजीली मेक अ पीरियड ड्रामा दैट इज फनी.
या व्हाई नॉट.
हाँ
बट देयर इज अ लाइन इन इट, देयर इज अ लाइन बिटवीन बीइंग फनी एंड बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल. आप मजाक के नाम पे कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते ना. यू नीड टू नो योर लिमिट्स कि यहाँ तक करूँ चलेगा. इसके ऊपर नहीं खेल सकते आप. किसी की भावना आहत करके हंसोगे तो आपको चप्पल पड़ेंगे. वो पढ़ने भी चाहिए, बिकॉज मजाक का मतलब ऐसा होता है कि टेबल पे बैठा हर कोई हंसे. पांच लोग मिलकर अगर एक का मजाक उड़ा रहे हैं और उसका मुंह उतर रहा है तो वो अच्छे मजाक की कैटेगरी में नहीं आता.
But what about freedom of expression? And some jokes are only meant for some people.
Freedom, वही मैं बोल रहा हूँ. Freedom of expression, you have got all the freedom. But फिर freedom of expression के अलावा भी तो freedom है ना इस देश में. Then you need to be ready to take the, you know, freedom of thrash then. When I say thrash, I'm not talking about hands. जब मैं बोल रहा हूँ चप्पल पड़ना चाहिए का मतलब ये नहीं कि कोई चप्पल उतार के फेंक दे. मतलब फिर you will have, if you are ready to take the heat, of your action has equal and opposite reaction.
Sure.
तो अगर उसके बाद कोई जाके कोर्ट में आपके खिलाफ एक अपील दायर कर रहा है और कोर्ट सुन के बोल रही है कि तुम्हारा अपील करेक्ट है, इसको सजा मिलेगी तो मिलेगी. तो फिर आप फिर उसके लिए तैयार हैं. अगर भाई आप सरहद पे सिपाही को भेज रहे हैं और सिपाही जा रहे हैं तो उनको मालूम है ना कि वहाँ गोली चलती है.
श्योर.
तो आप बंदूक लेके गए हैं किसी के घर और गोली चला रहे हैं तो सामने वाला या बचेगा या मारेगा.
आपके एक्सपीरियंसेस डायरेक्टर से मिलके क्या रहे हैं? एनी पर्टिकुलर डायरेक्टर दैट स्ट्राइक्स आउट यू, जिनसे आपने निजी तरीके से काम करा और उनके प्रोसेस से आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ ऐसी बात जानने को मिली जो शायद लोगों को नहीं पता उनके बारे में?
मैं फ़िलहाल बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहा हूँ और सभी से मेरे निजी संबंध अच्छे हैं. नहीं, मैं डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं नाम भी लूँगा. सभी से मेरे निजी संबंध अच्छे हैं क्योंकि एज अ राइटर भले मेरे डायरेक्टर, अगर मेरे दो ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो एज में मुझसे छोटे हैं पर वो मेरे डायरेक्टर हैं. तो जो हायरार्की है इनसाइड द फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ डायरेक्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप. द शिप में बिलोंग टू द प्रोड्यूसर, बट द कैप्टन ऑफ द शिप इज डायरेक्टर. तो आप एज में बड़े हो, एक्सपीरियंस में बड़े हो, अगर मेरे को ये पता है कि मेरा डायरेक्टर ओहदे में मुझसे बड़ा है, तो बचपन से हमको ये सिखाया गया है सिकंदर सभी के घर में कि आप जिसको बड़ा मान रहे हो उसको अगर आप इज्जत दोगे तो आपको प्यार मिलेगा, जिसको आप छोटा मान रहे हो उसको प्यार दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी. रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी बात
जी. सो एनी पर्टिकुलर नेम्स दैट स्ट्राइक आउट यू?
आई एम मैडली डीपली इन लव विद मिस्टर इंदर कुमार.
ओके.
फॉर दोज हु डोंट नो हिम, बहुत पुराने डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं. आपके एज ग्रुप वाले उनको जिन फिल्मों के नाम से पहचानेंगे वो है धमाल, टोटल धमाल. अभी थैंक गॉड फिल्म आई थी है ना, इश्क,
अजय देवगन वाली इश्क
जी, जी.
इसमें वो फेमस मरा 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 मरा, हाँ हाँ हाँ,
वो उनकी फिल्म है. एक राजा करके फिल्म आई थी अनिल कपूर साहब के भाई की. अच्छा. मिलाऊं कभी आँखियाँ चुराऊं क्या तू,
आई हैव हर्ड द नेम.
वो और पीछे जाएंगे उनके उसमें तो आमिर खान साहब की पहली या दूसरी फिल्म थी दिल विद माधुरी दीक्षित.
ओके.
बम्पर इट वो. और थोड़ा पीछे जाएंगे तो एक और फिल्म अनिल कपूर साहब की है बेटा.
ओके.
उनकी है. सो ही इज 69 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ. I am writing two films for him, and out of all the directors that I have met, he is a class apart. इतना बड़ा व्यक्ति है, पर आप उनसे मिलेंगे तो अगर मैं आपको नहीं बताया हूँ कि मैं आपको किसके सामने खड़ा कर रहा हूँ तो आप तीन घंटे उनके साथ बैठ के आ जाएंगे और आपको एक बार के लिए महसूस नहीं होगा, एहसास नहीं होगा. वो आपको वो एहसास होने नहीं देंगे दैट यू आर अ नोबडी. ही इज़ दैट डाउन टू अर्थ. हमारे घरों में सिखाया जाता है ना कि पेड़ में जितने फल लगते हैं वो पेड़ उतना झुक जाता है,
लदा हुआ पेड़ झुका होता है.
वो उसका जीता जाता वो पेड़ है और चलता फिरता पेड़ है वो, और वो इतने झुके हुए हैं कि आप बोलोगे कि होगा कोई पता नहीं. तो उनसे बहुत सीखने को मिल रहा है, उनसे प्यार भी. मैं सब लोग का पैर नहीं छूता. मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मैं किसके सामने झुक के पाँव छूँगा. नमस्ते सबको, क्योंकि एक एनर्जी फ्लो होती है जब आप झुक के, आपके फिंगर टिप्स में एक एनर्जी होती है और एक दूसरी एनर्जी होती है दूसरे के पैर में. एक कारण है कि क्यों विष्णु जी के पाँव पे लक्ष्मी जी बैठ के उनका पाँव दबा रही हैं. एवरीथिंग हैज़ रीजंस. सो व्हेन यू टच समबडीज फीट दिस एन एनर्जी दिस अ वाइब दैट फ्लोज इन यू एंड हिम
एंड आप उसे सेंस कर सकते हो. कुछ लोग आपको अच्छे नहीं लगते, आपको लगता है कि मैं इनको रिस्पेक्ट नहीं दूंगा और हाँ. कई बार आपको फोर्सफुली देनी पड़ती है.
वो करना मैं छोड़ चुका
हूँ.
तो आई मेट मिस्टर इंद्र कुमार फॉर द फर्स्ट टाइम. हेलो सर. आई मेट हिम फॉर द थर्ड टाइम. आई मेट हिम सर. नमस्ते सर. फॉर द फिफ्थ टाइम व्हेन आई मेट. अब ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं उनके ऑफिस में घुसूं और उनका पाँव ना छूं और उनके ऑफिस से निकलते समय फिर से उनका पाँव ना छूं. तो आई स्ट्रांगली बिलीव दैट एज के साथ इज्जत नहीं आती है. दैट्स अ सोल एज. हर आदमी के अंदर जो आत्मा है उसकी एक उम्र है.
वी ऑफन मिसकंस्ट्रू दैट इन इंडिया. मतलब मेरे को याद है ऐसे बड़े सारे बचपन के इंसिडेंट जहाँ ड्राइंग रूम में सब 16 लोग आए हुए हैं, सब बड़े हैं.
बेटा पाँव छू.
और नहीं, घर वालों की भी गलती नहीं होती. आप खुद ही पुराने ऐसे, आपको एक बार बोल दिया जाता है, आप उस रूल को फिर टटोलते नहीं हो. और आप सोचते हो कि दूसरे लोगों की एंजाइटी सोचो ना. मैं 13वें नंबर पर बैठा हूँ, अभी पहले के पैर छुए जा रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ, मेरे को ऐसे करना है. देन एज यू ग्रो अप यू रियलाइज 80% ऑफ पीपल आर नॉट वर्दी ऑफ माई रिस्पेक्ट बिकॉज दे हैव डन नथिंग. सिंपली बिकॉज ऑफ सीनियरिटी दे डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद दैट.
आपको पता भी नहीं है वो क्या करके आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कितना बुरा आदमी है इफ है तो. So on what basis are you touching somebody's feet? It goes not only on men but also women.
Agreed. 100%
so agreed. With time and nobody taught me this. मैं तो आपको बोल रहा हूँ, चार लोग सुन के फॉलो करेंगे शायद इस बात को. मैं इसको विद टाइम खुद मेरे को एहसास हुआ कि नहीं छूंगा पैर. मेरे मन से निकलेगा तो छूंगा पैर. हो सकता है कि मैं इतना बुरा आदमी हूँ कि एक मेरे से भी बुरे आदमी को देख के मेरे को लगे इसका पैर छूंगा मैं. That's okay.
ये बुराई का और भी बड़ा शहजादा है.
ये है पैर छूने लायक इन वट एवर टर्म्स. लेकिन मैं बस इसलिए नहीं छूंगा क्योंकि आपकी दाढ़ी में मेरे से ज्यादा सफेद बाल आ गए. और ये समझते समझते मेरी दाढ़ी और सर के बाल सफेद होने लग गए. तो ठीक है.
आई एम ओनली ब्रिंग दिस टॉपिक अप बिकॉज योर बुक इज कॉल्ड द हिडन हिंदू, अदरवाइज आई वुड नॉट. ठीक है. रिसेंटली राम मंदिर की इनॉग्रेशन हो रही है, बहुत सारे लोग उस पर विवाद कर रहे हैं. इट इज़ अ हिंदू इशू पर इट्स ऑल्सो अ पॉलिटिकल इशू. कुछ शंकराचार्य ऐसे कह रहे हैं कि जल्दी कर दिया है और बहुत सारी बात. आई डोंट वॉन्ट टू पुट एनी वर्ड्स इन योर माउथ. आई सिंपली वॉन्ट टू से बिकॉज चाहते ना चाहते हुए भी ना आपने हिंदू आइडेंटिटी के अंदर आप उसके फोर फ्रंट पर आ गए हो अपने लिटरेचर के माध्यम से. आपसे लोग सवाल पूछते होंगे हर रोज हिंदुइज्म के बारे में. What kind of position do you find yourself in regarding this incident and also just as a Hindu? But by titling your books as a hidden Hindu, you are at the center of it.
Mera bhi gana release hone wala hai, Ayodhya se hi.
Achha.
Isi pe, Ayodhya pe hi, 22 January ke pehle, shayad kal release ho raha hai. CNN 18 jo.
Aapne gaya hai ya aapne likha hai?
Mera likha hua hai.
Achha.
As I said, my name is this. I'm a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist.
Sure.
तो वो मेरा गाना रिलीज हो रहा है न्यूज़ 18 चैनल में, आप सुन पाएंगे. उसमें चार लाइनें हैं और वो हैं कि पल पल में युग युग में कण कण में राम, हर तन में हर मन में क्षण क्षण में राम. सो नंबर वन, इट इज़ नॉट अ हिंदू इशू. इट इज़ एटलीस्ट अ नेशनल इशू. इट इज़ एवरी रिलीजन इशू. And I would not confine to say that now they have made it a global issue also in a positive way. कि भाई जब आप जीसस का नाम पूरी दुनिया में ले सकते हैं, आप अल्लाह का नाम पूरी दुनिया में ले सकते हैं, तो फिर राम का नाम भी पूरी दुनिया में, उनका भी डंका बजने में आपको किसी को भी कोई तकलीफ क्यों. दूसरा जो आपने बोला कि भाई कई लोग नहीं जा रहे हैं, एक ये इशू हो रहा है. आपका घर खुद का है
जी.
जिनका नहीं भी है, जब आप किराए का लें, मेरे घर, मेरे जीवन में मैंने अपने खुद के खूब घर बनाए. बदकिस्मती से आज मेरे पास एक भी खुद का घर नहीं है. समय कई बार बिगड़ा है और हर बार मेरे हाथ से मेरा घर मैं मजबूरी में बेचा हूँ. उनमें से एक भी घर ऐसा नहीं है जो कंप्लीट तैयार होने के बाद मैं घुसा हूँ जिसमें. ऐसा नहीं होता है कि एकदम एक एक दाना यहाँ क्या लगे वहाँ क्या, सब हो जाएगा उसके बाद मैं उस पर प्रवेश करूँगा. घर है हमेशा बनता रहेगा, घर कभी पूरा नहीं होता, घर बनता ही रहता। तो ठीक है, जिन लोगों की निर्णय लेने की क्षमता थी भाई, आपने पूरे कलेक्टिवली एज अ कंट्री आपने एक पार्टी को सपोर्ट किया है ना, वो हाईएस्ट वोट पाके वहाँ बैठे हैं ना, तो उनको क्यों बिठाया हर चीज़ का निर्णय लेने के लिए?
श्योर
हर चीज़ का। जब इनकी सरकार नहीं थी, बाबरी मस्जिद के टाइम जब गोली चली, तो उस समय वहाँ जो सरकार बैठी थी वो डिसाइड की ना कि गोली मार दो इनको, तो उस समय उनका डिसीजन मेकिंग था, उनको जो सही लगा उन्होंने किया। तो आप एक सरकार चुनते हैं कि वो देश से संबंधित हर निर्णय ले, और देश के निर्णय के अंदर उसका व्यक्तित्व भी है, उसका व्यक्तिगत डिसीजन भी है। सब ने मिलकर डिसाइड किया कि ये तारीख है जिस दिन होगा, मैं बोलता हूँ होगा, इलेक्शन आ रहा है इसलिए जल्दी कर रहे हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आप ये क्यों नहीं बोल रहे हो कि जो भी है जैसा भी है, लेकिन आखिरकार कर रहे हैं?
आफ्टर ऑल दे हैव फुलफिल्ड मैनिफेस्टो प्रॉमिस, देयर इज नो डिनाइंग दैट, इवन इफ यू आर अ डिट्रैक्टर और अ हेटर और अ क्रिटिक, उनके मैनिफेस्टो में चीज़ लिखी हुई है।
हाँ, और मैं बोलता हूँ अगर वो अपनी जबान पर कायम रह रहे हैं, उन्होंने बोला कि अगले इलेक्शन के पहले हम राम मंदिर बनवा देंगे, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अब 2024 आ गया, सारी चीज़ इनके हाथ में नहीं थी ना, सुप्रीम कोर्ट में इतने समय निलंबित रहा, चलता रहा चलता रहा, फाइनली डिसीजन आया, उसके बाद से तुरंत से काम पे लगे, जब हो पाया, लेकिन मतलब अगर वो नहीं करते, अगर समय पे और इलेक्शन होने देते, तो आप बोलते कि देखे बोला था इस इलेक्शन के पहले करा देंगे, कहाँ करा पाए? ये वही लोग हैं ना जो बोलते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब बता दिए हैं 22 जनवरी की तारीख है, तो बोले तैयार नहीं हुआ तो कर रहे, कर तो रहे हैं कम से कम, इतना किए हैं तो ऐसा तो नहीं ना कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोल देंगे भैया अपना काम हो गया, मंदिर का काम रोक दो रे, पैसा बचाएंगे। करेंगे ना कंप्लीट?
श्योर
कर ही रहे हैं। तो अगर वो आप बोल रहे हो राम जी का घर है, तो राम जी का गर्भगृह बन गया, छत ढल गई है ना, उस पर कौन से रंग का पीओपी होगा वो हो जाएगा, राम जी खुद डिसाइड करेंगे, मेरे को बाकी का घर इस कलर का चाहिए, इस दीवार में ये पेंटिंग है ये चाहिए, यहाँ वो म्यूरल लगा, और चलता रहेगा काम, कोई प्रॉब्लम नहीं इस बात पे।
थैंक यू फॉर दैट एलोंगेटेड कॉम्प्रिहेंसिव रिस्पॉन्स। एट द एंड, क्योंकि आप राइटर भी हो और आप पिक्चरों में भी काम करते हो, आप इतने अच्छे वक्ता भी हो, आप इतने इंटरव्यूज भी देते हो, जो भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आप की जीवनी आपने बहुत हद तक इंटरव्यूज में बताई है, फिर भी आपने स्टार्टिंग में बात करी थी हेटेड की, तो इज देयर अ पर्टिकुलर मैसेज दैट यू थिंक विल बेनिफिट एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस, इफ देयर इज वन मैसेज यू कुड गिव टू देम?
वन, खूब गलती करो, रोज गलती करो, पर रोज नहीं गलती करो यार, हर दिन सेम सेम गलती मत करो। व्हाट आई मीन इज कि आज आपकी कुछ आपको पता होता है, पूरी दुनिया को बाद में पता चलेगा, आपके बगल में बैठे व्यक्ति को भी बाद में, आपको सबसे पहला पता चलेगा गलती हो गई है। अगर इस इंटरव्यू में कुछ चल रहा होगा और मेरे मुंह से कुछ गलत निकलेगा ना, तो मेरे को पता रहेगा कि गलती हो गई, मैं कैमरा बंद करूंगा, भाई वो वाला पार्ट ना हटा देना, होता है ना
जी,
सबसे पहले आप ही को पता चलेगा आपसे गलती हुई। अगर इफ़ यू वांट कि आप आज जो व्यक्ति हैं उससे बेहतर व्यक्ति आप कल बन जाएं, तो आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपने आज जो गलती की है ना वो कल मत करो, कुछ नया गलती करो। गलती आप करेंगे, करना भी चाहिए भाई, ठोकर खा के ठाकुर बनते हैं, मरे बिना स्वर्ग नहीं पहुंचते, मैं मरूंगा तो आप थोड़े ना स्वर्ग जाएंगे, मैं ही जाऊँगा। तो गलती से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती नहीं करो, वही गलती करते रहेंगे हम, वही बोलते रहेंगे हम, तो वैसे ही होता रहेगा, जो आप इनपुट जो डालेंगे वही ना आउटपुट निकलेगा।
करेक्ट।
तो आपको नया आउटपुट चाहिए तो आपको इनपुट नया डालना पड़ेगा, आपको कुछ नया सीखना है तो आपको गलती नहीं करनी पड़ेगी,
आपको साहस चाहिए नए तरह से फेल होने के लिए।
हाँ, फेल तो अच्छे से भर भर के फेल हो, कोई प्रॉब्लम।
ग्रेट, अक्षत जी आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा होता हूँ, जब मैं एंड कर रहा होता हूँ, मैं अक्सर ना एक फॉर्मल हिंदी में चला जाता हूँ, मेरा स्टाइल है, तो आप उससे मेरी फॉर्मेलिटी को मत समझना, इनफॉर्मली समझना इसको। पर आपके वक्त के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जो पुस्तकें हैं जो देश भर में अब दुनिया भर में जा रही हैं और प्रसिद्ध हो रही हैं, उनके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार से आप देश को अपने शब्दों के माध्यम से, चलचित्रों के माध्यम से, इस धर्म की और अन्यथा और ऐसे धर्मों की और बातें कहते रहें। और एज स्टोरी टेलर को क्या बोलते हैं हिंदी पे, क्या बोलते हैं स्टोरी टेलर को,
कहानीकार,
कहानीकार, एज अ कहानीकार की हैसियत में आपका जो जो ऊर्जा है वो और बढ़ती रहे। सारे वर्ड यूज़ कर दिए मैंने हिंदी में।
थैंक यू सो मच। मुझे तो आपके साथ पॉडकास्ट करने में बहुत मज़ा आया सिकंदर भाई। आप ऑन दी कैमरा या ऑफ दी कैमरा, जब आपका मन करे आपको बता दिएगा कि आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस,
मैं
आपका अनुभव कैसा रहा।
मेरा अनुभव बहुत ही रोचक रहा। मुझे ऐसा लगा कि आपकी जो शब्दों पर क्या बोलते हैं कमांड है
जी,
वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप इंसान के हिसाब से अपने शब्दों को डाल के वो कहानी बता सकते हैं जो उसको सुनने की इच्छा है, जो लोगों के हित में भी होगी। अक्सर ऐसा होता है, पीपल से दे आर स्टोरी टेलर्स बट दे बिकम वेरी इनवर्डली फोकस्ड और दे फॉरगेट दैट दे आर प्लेइंग टू समवन हु वांट्स टू लिसन एंड दे बिकम टू सेल्फ इंडल्जेंट। आई थिंक दैट इज व्हाट यू डोंट हैव, सो आई हैड अ ग्रेट टाइम।
थैंक यू सो मच।
थैंक यू। आपके ऑब्वियसली तीनों किताबें लोगों को पता ही हैं, द हिडन हिंदू, आई विल जस्ट से इट अगेन, दे आर अवेलेबल ऑन Amazon, व्हेयर एल्स,
Flipkart, Amazon, ऑल दी known major bookstores of the country, all the airports, you name it and we are there.
Awesome. And where can people follow you and your work?
वो अगर हो पाए तो आप लिख दीजिएगा, मेरा Instagram handle है, just put author before my name.
ठीक है, author अक्षत गुप्ता।
author अक्षत गुप्ता। मैं सबसे ज़्यादा active Instagram पे हूँ। मेरा mail ID तीनों book के first page में अंदर लिखा हुआ है।
ठीक है।
We are already getting more than 100 fan mails every day. And we are wanting to get 1,000 mails every day.
Great.
So we are working on it.
Let's work on that record. Thank you so much. Thank you for your time.
Bye-bye.